प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। तीन भुवन में सार वीत रागे वी ज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमाहु त्रियोग समार के। इस मंगलाचरण के साथ साथ आपने बहुत सारे विषयों को छड़ाला के माध्यम से जान लिया है कि किस प्रकार से ये जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और कैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के माध्यम से अपने आचार को सदाचार के रूप में परिवर्तित करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो सकता है। भगवान के सच्चे अस्तित्व को जानने का मतलब यही है कि हम भी अपनी आत्मा को भगवान आत्मा बनाएं। तो इसके अंदर अब पांचवी ढाल में 12 भावनाओं के चिंतन की बात चल रही है कि किस प्रकार से महामुनि जन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अपने उत्तर गुणों का पालन करते हैं। आप और हम सब लोग 12 भावना, कोई भी 12 भावना हो, चाहे मंगत राय जी की है, चाहे भूधर दास जी की है, राजा राणा छत्रपति, इन इनमें से कोई भी 12 भावना एक बार जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें संसार भावना का वर्णन चलेगा। अनित्य और अशरण के बारे में जाना आपने कि संसार की हर वस्तु अनित्य है, क्षणिक है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो अपना केवल एक आत्मा। ऐसे ही संसार के अंदर धर्म के अतिरिक्त कोई भी शरणभूत नहीं है जिसे हम मानने लगते हैं कि ये हमारे रक्षक हैं, ये हमारे शरण हैं। वे कोई भी शरण नहीं है क्योंकि मरने से कोई भी बचाने वाला नहीं रहता। अब है तीसरी भावना, संसार भावना। चहूं गति दुख जीव भरे परिवर्तन पंच करे, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। चहूं गति, चार गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। इन चार गतियों के माध्यम से ये जीव संसार के अंदर दुख को उठा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने खाने की चीज से सुख प्राप्त कर लिया, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, भोग भोग की वस्तुएं मिल जाती हैं, उसी में क्षणिक सुख मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ सुख उसको कहा है जिस सुख के बाद कभी दुख ना आए। और देखो, खाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती है, कपड़ा पहनने के बाद फिर वो बुरा लगने लगता है, दूसरा खरीदने का मन करता है, दूसरी चीज अच्छी लगने लगती है। इसी प्रकार से भोग और उपभोग की सभी वस्तुएं दुखकारी हैं। इसलिए संसार भावना में ये बताया कि 84 लाख योनियों में ये जीव चारों गतियों में जन्म ले लेकर और दुखों को भरे है, माने दुख उठाता है, दुख का भरण करता है, अर्थात दुख को भोगता है। परिवर्तन पंच करे हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ऐसे पांच प्रकार का परिवर्तन होता है। यानी पांच प्रकार के परिवर्तन से ये जीव अनादि काल से कभी उबर नहीं पाता। कभी तिर्यंच गति में गया, एक इंद्री में चला गया, कभी साग भाजी बन गया, तुच्छ घास फूस बन गया, उसमें भी जीव होता है, और वहां पर जघन्य आयु बिताई, एक एक समय बढ़ा करके फिर आगे आगे कर करके वहां से मरकर फिर जब कभी उसमें जन्म लिया एक समय आगे बढ़ा कर रहे, पंच परिवर्तन का स्वरूप अगर आप समझने लग जाओ, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ना, जिसके अंदर पंच परिवर्तन का इतना विस्तृत स्वरूप है कि उसको पढ़ करके लगता है कि क्या सचमुच हम ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं। यानी एक-एक गति के, एक-एक जीवों की जघन्य आयु, मध्यम आयु, उत्कृष्ट आयु भोग भोग करके, और न जाने कितने समयों के बाद जा करके कभी मनुष्य पर्याय मिली, तो उसको भी विषय भोगों में, पापों में, व्यसनों में ये जीव व्यतीत कर देता है। उस समय उसे कोई भान नहीं रहता कि मुझे आगे इसके द्वारा इस पाप को करने से कभी दुख भी मिलेगा, क्योंकि पाप करते समय जीव नहीं सोचता, और जब पाप का फल मिलता है तब लगता है हमने कोई पाप जरूर किया होगा जिसका फल आज मिल रहा है। तो ऐसे पांच परिवर्तन को कहाँ करता है संसार में, मोक्ष में कोई परिवर्तन नहीं। संसार और मोक्ष दो ही चीजें हैं, संसारी और मुक्त दो ही प्रकार के जीव हैं। तो संसारी संसरणम करोति इति संसारी, और जिस संसार के अंदर जीव परिभ्रमण करता है वह संसार और कोई बनाता नहीं है, हम सब ही अपनी सृष्टि के निर्माता हैं, हम सबसे ही ये संसार बना है। तो जहां पर पंच परिवर्तन करते हैं जीव चारों गतियों के दुखों को उठाते हैं, ऐसा संसार सब विधि संसार असारा, हर प्रकार से वह संसार असार है। उसको अगर कोई सार मान ले तो समझो कि उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वहां पर लेश मात्र भी, क्षण मात्र भी, लव मात्र भी, किंचित मात्र भी सुख नहीं है। जो सुख दिख रहा है वह सुख का आभास है, वहां आत्मिक सुख नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। तो ऐसे संसार में कह रहे सुख ना ही लगा रहा, उसमें सुख नाम की वस्तु नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दुखम किंचित सुखम किंचित चित्ते भाति जड़ात्मना संसारे तु पुनर नित्यम दुखम इति विवेकिना। जो लोग ये सोचते हैं कि संसार में कुछ दुख है कुछ सुख है, तो उनको कहा कि वो जड़ात्मन यानी कि वो मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, वे ठीक से समझ नहीं पाए हैं। और असलियत में क्या है कि हमेशा संसार में तो दुख ही दुख है, अगर सुख है कहीं तो मोक्ष में है, निर्वाण में है, सिद्ध शिला में है, परमामृत ज्ञान का अमृत जो केवल ज्ञानी के रूप में भोगते हैं वह सच्चा सुख है। इसलिए संसार सारहीन है, वहां किसी भी प्रकार का चैन नहीं है, सुख नहीं है, ऐसा विचार करना संसार भावना है। जब बड़े बड़े योगी जन उस संसार की असारता का चिंतन करते हैं तभी तो छूटते हैं उससे, तभी तो छोड़ते हैं उनको, वरना अगर संसार के सुखी सुख की ओर देखने लग जाएं, अरे देखो दिल्ली शहर कितना अच्छा है, विदेश में जाएंगे घूमने और सारे शहरों के अंदर कितनी रंगीनियत है, अगर उसके अंदर सुखी सुख देखते रहेंगे तो उसको छोड़ने का कभी मन नहीं कर सकता। जब ये सोचा जाएगा कि इन चीजों को न जाने कितनी बार हमने भोगा है, इन चीजों को हमने न जाने कितनी बार खाया है, ऐसे सांसारिक सुखों को हमने न जाने कितनी बार भोगा है, लेकिन फिर दुख मिल जाते हैं, तब जा करके उससे वैराग्य होगा और तब संसार भावना का चिंतन अपने लिए सार्थक हो सकता है। अब आगे उसके बाद चौथी भावना आती है एकत्व भावना। एकत्व माने एक, एकमात्र वो क्या है, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय हे कहीं ते, सुत धारा होए नसीरी सब स्वार्थ के हैं बीरी। यानी एकत्व माने एक आत्मा ही केवल संसार के अंदर सारभूत है। तो इसके अंदर कहा कि कैसा चिंतन करना, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जितने भी शुभ हैं अशुभ कर्म हैं उनका जो अच्छा बुरा फल मिलता है तो वे सब जीव अकेला ही भोगता है। हमने कर्म किया उसका फल कोई क्या आप भोग लीजिए, नहीं हो सकता। किसी के यहाँ शादी का कार्ड आया है आपके नाम से तो आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, दूसरे को भेज सकते हैं, लेकिन जो कर्म हमने बांधे हैं उनका फल अपने को ही भोगना पड़ेगा। आपने कर्मों को बांधा उसका फल हमें नहीं मिलेगा, हमने जो कर्म किए उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो उसका फल भोगने वाला एकमात्र वही जीव है जिसने किया है। इसलिए कहा कि सुत धारा होय न सीरी, सीरी माने उसमें कोई भी भागीदार नहीं हो सकते। जो पुत्र एकदम आज्ञाकारी अपनी जान देने को तैयार रहता है माता पिता के लिए वह भी हमारे कर्मों का फल नहीं भोग सकता। वह अपनत्व तो दिखा सकता है, मौका पड़े तो अपनी जान दे सकता है, लेकिन हमारे कर्म का फल वो नहीं भोग सकता, यानी उसमें हिस्सेदार नहीं बन सकता। सब स्वार्थ के हैं भीरी, और सभी जितने भी परिवार के लोग हैं रिश्तेदार हैं वे सब स्वार्थ बस अपने पीछे लगे हैं। पत्नी सोचती है पति के बिना मैं कैसे रहूंगी, पति सोचता है पत्नी के बिना तो घर ही बेकार हो जाएगा, माता पिता सोचते हैं हमारे पुत्र पुत्रियों के बिना क्या है, या धन संपत्ति के बारे में सोचते हैं कि इनके बिना हम क्या करेंगे, जीवन ही बेकार है। ये सब सोचने से अपने कर्म बढ़ते हैं। तो जितना भी संसार है, जितने भी हमने रिश्तेदार नातेदार अपने समझ रखे हैं इनको कहा सब स्वार्थ के हैं। वैसे अभी आपको कोई कह दे बड़े स्वार्थी हो तो बुरा लग जाएगा, हमने कौन सा स्वार्थ किया है। तो आचार्य गण क्या कहते हैं कि सब स्वार्थ के हैं, यानी अपने अपने सुख के लिए सब लोग जीते हैं। आप देखो अगर स्वार्थ के ना हो तो जाके आपकी चिता में जल जाएंगे क्या? अरे कोई मर जाता है, कोई दरवाजे तक जाता है, कोई थोड़ी दूर जाता है, कोई मरघट तक चला जाता है, और उसके बाद सब लोग थोड़ा थोड़ा वैराग्य का चिंतन करते हुए अपने वापस आ जाते हैं। यही संसार की स्वार्थपरता और ये कटु सत्य है। और यदि असली स्वार्थ स्व माने अपना, अपना अर्थ माने आत्मा का प्रयोजन यदि सिद्ध कर लें तो वह स्वार्थ जो है सार्थक हो जाएगा। इसलिए एकत्व भावना का यही अर्थ समझना कि जो अपनी आत्मा है वह सदा अविनाशी परम हितकारी और परम बंधु है। विनश्वर तथा अहितकारी जो पुत्र मित्र आदि हैं वे बंधु नहीं है, अथवा पुण्य और पाप कर्मों के जितने फल हैं उनको ये जीव अकेला ही भोगता है। स्त्री पुत्र आदि कोई भी उसमें भागीदार नहीं बन सकते, ऐसा चिंतन करना एकत्व भावना है। एकांत में जरूर चिंतन करना कि बस जो सारो सब सारे सु सो सारो एस गोयम। गौतम गणधर स्वामी जो भगवान महावीर के प्रमुख गणधर थे उन्होंने भी भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से यही अर्थ निकाला और कहा कि हे गौतम, अपनी आत्मा को संबोधित किया, संसार में यदि सार में सार कोई वस्तु है तो हे गौतम सारम झाड़ंति नामेण, वह केवल ध्यान शुक्ल ध्यान जिससे आत्मा का कल्याण होता है वह सारे सब बुद्धे ही देशिदम। सारे ऋषि मुनि सर्वज्ञ देव ने यही कहा है और इसी के द्वारा इस ध्यान के द्वारा ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है। इसलिए एकत्व भावना में केवल आत्मा का चिंतन करना और अकेला ही मैं अपने कर्मों के फल को भोगूंगा ऐसा चिंतन करना यही एकत्व भावना है। अन्यत्व भावना आगे एकत्व और अन्यत्व भिन्न भिन्न वो कैसे, जल पै जो जिय तन मिला पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, प्रगटे जुदे धने धामा, क्यों वही के मिल सुत रामा। अपनी ढूंढारी भाषा के अंदर कविवर ने कहा कि जिस प्रकार से जल और पय, पय माने दूध, जल और दूध जिस प्रकार से एक में ही मिला दिए जाते हैं, अलग अलग, जल अलग है दूध अलग है, लेकिन जब एक में मिला देते हैं तो वो बिल्कुल एक में एक दिखने लग जाते हैं। कोई नहीं कहता पानी मिला दूध है, सब कहते हैं दूध है। यानी दूध के अंदर पानी मिल जाता है तो पानी भी दूध के भाव से बिक जाता है और उसको दूध ही कहा जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया कि जिस प्रकार जल और दूध भिन्न भिन्न होते हुए, अलग अलग होते हुए भी एक में मिल गए हैं, किंतु ज्ञानी जन क्या कहते हैं, ये तो भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं इसलिए जब उसको औंट देते हैं, खोया बना देते हैं, पानी उसमें से उड़ जाता है और दूध का वो सार बन जाता है जिसे कहते हैं खोया, खोया और तत्व, माने पानी उसमें खो गया और सारा दूध उसमें खो करके वो तत्व बन गया। तो भिन्न भिन्न है वो, एक में एक दिखते हुए भी उसी प्रकार से शरीर और आत्मा जल और दूध के समान एक में एक मिले हुए हैं, लेकिन वह अलग अलग हैं। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अगर भिन्न नहीं होता तो शरीर जब मुर्दा हो जाता है तो आत्मा निकल जाता है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। इसलिए सबको एक बार मानना पड़ता है कि शरीर के अंदर कोई एक चैतन्य आत्मा है जो निकल करके चला गया। तो भिन्न भिन्न हुए कि नहीं? आत्मा नहीं मरता, शरीर मरता है। तो प्रगट जुदी धन धामा, क्यों भय एक मिल सुत रामा, कि शरीर और आत्मा दोनों जुदे जुदे हैं, स्पष्ट रूप से अलग अलग हैं। तो भला स्त्री पुत्र धन मकान ये अपने कैसे हो सकते हैं? तो सामने दिख रहे हैं कि सब कुछ अलग है। देखो यहाँ पुस्तक भी अलग रखी है, आप लोग सब अपने से अलग अलग बैठे हो, लेकिन अगर मैत्री हो जाती है ये तो हमारे अपने हैं, अपने मानने लग जाते हैं शरीर की अपेक्षा, संसार की अपेक्षा, रिश्तेदारी की अपेक्षा। लेकिन अगर आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखेंगे तो सब अलग अलग है, शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए सबको भी संबोधन देते हुए ये बात कही जाती है कि शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न समझना, हे भव्य प्राणी तूने न जाने कितने भावों में अपनों के लिए रुदन मचाया, क्या कोई कभी तेरे साथ में गया क्या? नहीं ना, क्योंकि ये जुदे हैं। जब अपना शरीर बिल्कुल एक में एक आत्मा के साथ है तो भी अपना नहीं है, तो भला दूसरे कैसे अपने हो सकते हैं? ऐसा चिंतन हमेशा करना ये अन्यत्व भावना है, अर्थात संसार की कोई भी वस्तु मेरी अपनी नहीं है। दूध पानी के सदृश एक में एक होने वाला शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसा चिंतन कर लेना यही एकत्व भावना है, और मैं एक हूँ इस प्रकार विधि रूप से एक पने का चिंतन किया जाता है। फिर शरीर का भी चिंतन नहीं, फिर अपने शास्त्र का, पिच्छी का, मंडलों का, किसी चीज का चिंतन नहीं होता है, और मुझसे सब चीजें भिन्न हैं इस प्रकार निषेध रूप से उनका चिंतन किया जाता है, विधि रूप से आत्मा का ध्यान किया जाता है और निषेध रूप से दूसरों को नेग्लेक्ट किया जाता है कि हमारा शरीर भी अपना नहीं है, तो दूसरे भला अपने कैसे हो सकते हैं? कहते हैं कि कोई अपना होकर के भी कितना दुख दे रहा है, तो इसे तूने अपना मान रखा है ना। जो पुत्र है, जो पुत्री है, जो अपने मित्र दिखते हैं, क्या वो कभी शत्रु नहीं बने? जिन्हें हम शत्रु मान रहे हैं, क्या वो अपने पुत्र पुत्री नहीं बने? तो ऐसा चिंतन करने से एकत्व और अन्यत्व भावना के चिंतन के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है, और इससे अपने अंदर सहन करने की, दुखों को भी सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। यही आज के स्वाध्याय का सार है ना।